हम कुछ दिन से गौर तत्व व रस तत्व पे व्याख्या कर रहे थे और हमें भीतर से लगा कि यदि हम वो तत्व का आधार यदि नहीं दे पाए आपको तो उस रसास्वादन करना, गौरमुख चंद्र का रसास्वादन करना, उनको स्पर्श करना कदापि संभव नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ये सत्र हम सोच रहे थे कि दें या ना दें, परंतु हमें लगा ये अनिवार्य है अगर कोई भगवत रस आस्वादन करना चाहता है तो, इसलिए हम आज का सत्र ले रहे हैं। एक पंक्ति में सत्र है, पंक्ति ये है परमात्मा के सिवाय हमें कोई स्पर्श नहीं कर सकता, भगवान के अतिरिक्त हमें कोई स्पर्श नहीं कर सकता। ये बात समझ आ जाए तो संपूर्ण अनर्थ निवृत्ति तत्क्षण हो जाएगी और भगवत प्राप्ति का, गौरचरण प्राप्ति का लोभ तत्क्षण जागृत हो जाएगा। और यदि यह संभव समझ ना आए कि परमात्मा के अतिरिक्त मुझे कोई स्पर्श कर सकता है, यह समझ यदि ना आए तो अनंत काल तक साधना करने के बाद भी भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती है। श्रीमद् भगवद गीता में बताया जा रहा है बाह्य स्पर्शेष्व असक्त आत्मा विन्दति आत्मा यत् सुखम्। बाह्य स्पर्श, केवल परमात्मा ही आत्मा को स्पर्श कर सकता है, यानी कि परमात्मा ही मुझको, मैं आत्मा, मुझे स्पर्श कर सकता है। बाह्य स्पर्श ये बाह्य है, ये मेरे अतिरिक्त है, मेरे ये बाहर का है। क्या क्या बाहर का है? शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, परिस्थितियां, व्यक्ति, वस्तु, ये सब बाह्य है, ये बाहर का है, ये मुझे स्पर्श नहीं कर सकता। इह एव तेर जितः, भगवद गीता में पांचम अध्याय में बताया गया है, यह एव, ये सब व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, ये सब पर है, पर धर्म है, ये इनका मुझ जीवात्मा से कोई संबंध नहीं है। ये सत्र बहुत सूक्ष्म है, भगवत कृपा लब ही ये समझ पाएंगे जो हम बोल रहे हैं। ये मुझ आत्मा को स्पर्श नहीं कर सकता, मन, बुद्धि या ये शरीर, आत्मा कभी इनमें लिप्त नहीं हो सकता कोई भी क्रिया करते हुए भी। और जो इन बाह्य स्पर्शों से की आसक्ति से रहित होता है, विन्दति आत्मा यत् सुखम्, उसी को ये भगवत सुख प्राप्त होता है। जो आसक्ति रहित है बाह्य स्पर्शों से, अभी किसी से भी पूछे कि सबसे श्रेष्ठ सुख क्या है संसार का, कौन बताएगा, कौन बताएगा? सामान्यतः व्यक्ति बोलते हैं स्पर्श सुख, परंतु हां मूल व्यक्तियों के लिए तो ये शेष सुख है जो मूल हैं। क्यों? क्योंकि आप समझिए स्पर्श सुख, ये दो शब्द हैं, स्पर्श सुख सबसे शेष माना जाता है, पर समझने की बात यह है आत्मा का तो स्पर्श ही किसी से नहीं होता, तो स्पर्श और सुख कैसे प्राप्त होगा? फिर स्पर्श सुख प्राप्त होने के लिए पहले स्पर्श होना पड़ेगा। आत्मा भगवत गीता के 13वें अध्याय में बताया गया शरीर स्थिति कौनतया ना करोती ना लिप्यते, ना वो कुछ करती है ना लिप्त होती है। आत्मा इस शरीर में बैठे हुए ना करोती ना लिप्यते, लिप्त नहीं होती, आत्मा कभी किसी मनुष्य के किसी भी कार्य में लिप्त नहीं होती। मनुष्य कोई भी कार्य कर ले, आत्मा कभी लिप्त नहीं होती। शरीर सभी कौन त्याग, उसमें शरीर में रहते हुए भी आत्मा कभी लिप्त नहीं होती है। स्पर्श नहीं करती किसी का। आपको हैरानगी होगी, आप स्पर्श सुख की बात सोच रहे हैं, श्रेष्ठ है। स्पर्श सुख मतलब किसी शरीर का किसी शरीर के साथ स्पर्श होना, वो आत्मा अपना स्पर्श मान रही है। सोचिए, आत्मा को तो इस शरीर का भी स्पर्श नहीं होता, तो उसे दूसरे शरीर का स्पर्श कैसे हो सकता है, आप बताइए। आत्मा जो स्पर्श सुख को मान रही है, सबसे ऊंचा है संसार में। आप ईश्वर से, महाप्रभु से प्रार्थना करिए, ये बात समझ आ जाए जो हम बता रहे हैं। ये अगर नहीं समझ आई तो कीर्तन जप जो भी हम कर रहे हैं ऊसर भूमि में बीज बोने के समान हो जाएगा, क्योंकि ये लालसा खत्म होगी नहीं स्पर्श सुख की। आप समझे कि ये शरीर को भी स्पर्श नहीं कर सकती आत्मा को भी, तो दूसरे के शरीर को कैसे स्पर्श कर सकती है। और जब स्पर्श ही नहीं है तो स्पर्श सुख कैसे होगा। पूरा संसार इसी क्रिया में लिप्त है और लिप्त होना चाहता है, परंतु समझ नहीं पाते कि जब स्पर्श ही नहीं है तो स्पर्श सुख कैसे होगा। भगवान बताते, ना तेषु रमते बुद्धाः, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो इन स्पर्श सुख के अंदर रमण नहीं करता। स्पर्श सुख में रमण नहीं करता। क्यों नहीं करता रमण? क्योंकि उसे पता है कि स्पर्श ही नहीं है जब, तो स्पर्श सुख कैसे हो सकता है प्राप्त। और ये समझना बहुत जरूरी है, ये इसलिए क्योंकि जब तक व्यक्ति के अंदर स्पर्श सुख की चाह रहेगी, तो चाहे वो जंगल में चला जाए, चाहे वो गुफा में चला जाए, वो ध्यान करे गौरांग महाप्रभु के ऊपर, गौर नाम ले, गौर गायत्री करे, अपना कोशिश करे पूर्ण रूप से ध्यान करने की, पर यदि उसको लगता है कि स्पर्श सुख इस संसार में है, और गुफा में रहते रहते भी चिंतन गौर का नहीं स्पर्श सुख का करेगा, और यदि यह स्पष्टीकरण हो कि स्पर्श सुख त्रिकाल में संभव नहीं है, हमने कभी किसी को स्पर्श ना कभी किया है, ना अब कर रहे हैं, ना कभी कर पाएंगे। स्पर्श सुख मतलब एक ऐसी चाह जो कभी पूरी नहीं हो सकती संसार में, संभव नहीं है स्पर्श करना। किसी की औकात नहीं है कि मुझे स्पर्श कर सके परमात्मा के अतिरिक्त। केवल परमात्मा ही मुझ आत्मा को स्पर्श कर सकता है। केवल मेरा प्रीतम, मेरे प्राणनाथ श्री गौर सुंदर ही मुझे स्पर्श कर सकते हैं। संसारी व्यक्ति अपने आप को स्पर्श नहीं कर सकता, तो हमें कैसे स्पर्श करेगा। और जब तक स्पर्श सुख की इच्छा से रहित नहीं होंगे, तब तक भगवत प्राप्ति तो छोड़िए, भगवत प्राप्ति की इच्छा भी जागृत नहीं होगी। क्योंकि इच्छा तो स्पर्श सुख में गई ही है कि प्राप्ति में, कि मुझे स्पर्श सुख मिल जाए, मैं स्पर्श सुख को बढ़ा लूं। 15 साल 20 साल भजन करते हो गए और अभी भी क्या मानते हैं, स्पर्श सुख सबसे श्रेष्ठ है। स्पर्श सुख तो होता ही नहीं है, तो श्रेष्ठ कैसे होगा। जीवात्मा को स्पर्श करने का संभावना भी नहीं है किसी को। स्पर्श सुख की अब हम आपको जितने कोशिश कर सकते हैं आपको समझाने की, हम चेष्टा कर रहे हैं, बाकी गौर सुंदर की जिसमें कृपा हो वही समझ पाएगा। स्पर्श सुख की इच्छा भी क्यों होती है, इसलिए होती है कि व्यक्ति सोचता है कि मुझमें कोई अभाव है, इसलिए मुझे यह क्रिया करके सुख मिल जाएगा। पर आत्मा जो है चेतन अमर सहज सुख राशि, आत्मा में कभी कोई अभाव कोई खालीपन है ही नहीं। क्योंकि हमें गलत फहमी होती है कि हमारे में खालीपन है, कुछ कमी है, कुछ मिसिंग है, तो उसकी पूर्ति के लिए हम कोशिश करते हैं स्पर्श सुख मिल जाए। जब हमें समझ आ जाए कि जो मैं हूं सहज सुख राशि हूं, मुझे स्पर्श सुख की कोई आवश्यकता ही नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है। आपको एक और बात बताएंगे, आपको शायद देखिए, हम वास्तव में स्पर्श सुख चाहते भी नहीं है, अब आप कहेंगे ये क्या कह रहे हैं, हम तो चाहते हैं। अरे आप नहीं चाहते, आत्मा केवल आनंद चाहती है। वो गलत कहीं में सोचती है कि स्पर्श सुख में आनंद है, इसलिए वो स्पर्श सुख की गलत कामना कर रही है, जबकि आत्मा स्पर्श सुख चाहती ही नहीं है। कभी त्रिकाल में भी स्पर्श सुख नहीं चाहती आत्मा, क्योंकि आत्मा आनंद चाहती है। आनंद का किसी स्त्री या पुरुष से कोई संबंध नहीं है, आनंद भगवान है। आनंदो ब्रह्मेति बेजानात, जो परमात्मा भगवान है वह आनंद है। आत्मा केवल परमात्मा को चाह सकती है, परमात्मा के अतिरिक्त कुछ चाह ही नहीं सकती। वो चाह इसलिए रही है क्योंकि उसे समझ नहीं आया कि वो सहज सुख राशि है, जो कमी उसमें है नहीं। उसको गलत फहमे के कारण, मानने के कारण वो स्पर्श सुख की चाहना कर रही है, और वो प्राप्त कभी होगा नहीं, क्योंकि स्पर्श सुख होता ही नहीं है संसार में। हाँ, स्पर्श सुख है, कहां है? नित्य नवद्वीप में, गोलोक में, वहां हम भगवान को स्पर्श कर सकते हैं और भगवान हमें स्पर्श कर सकते हैं, और यहां पर तो कोई किसी को स्पर्श नहीं कर सकता, तो इसलिए यहां स्पर्श सुख संभव नहीं है। स्पर्श सुख जो है भगवान के धाम में ही संभव है, परंतु वहां जाने के लिए, वो स्पर्श सुख पाने के लिए इस स्पर्श सुख, काल्पनिक स्पर्श सुख की इच्छा को छोड़ना होगा, वो भी हृदय से, हृदय से छोड़ना होगा। हां, मैं नहीं चाहता स्पर्श सुख, क्यों? क्योंकि यह प्राप्त नहीं हो सकता। जब तक स्पर्श सुख की कामना को नहीं छोड़ेंगे, वो दिव्य स्पर्श, गौर सुंदर का स्पर्श में कभी प्राप्त होना संभव नहीं है। व्यक्ति को लगता है कि नहीं, आप कह रहे हो हमें तो लगता है स्पर्शों का अनुभव करते हैं, तो श्री कृष्ण इस बारे में क्या कह रहे हैं? अहंकार विमूढ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। अहंकारवश व्यक्ति मानता है कि मैंने ये किया, करता हूं, मैंने स्पर्श सुख का अनुभव किया, इसे कहते हैं करता अहम, मैंने किया, जबकि संभव नहीं है। कौन मानता है बात? अहंकारी आदमी। और भगवान के शब्द हैं विमूढ, मूढ़ मतलब क्या होता है? मूढ़मति क्या होता है? मूढ़मति मूर्त व्यक्ति। और भगवान करे विमूढ़, विमूढ़ मतलब अव्वल दर्जे का मूर्त व्यक्ति, वही मानता है कि मैंने स्पर्श सुख का अनुभव किया। स्पर्श सुख त्रिकाल में संभव नहीं है, ये हम अपने आप को भीतर ये बात बिठा लें, ये दिखाना अत्यंत अत्यंत आवश्यक है। अब आप कहो कि हमें स्पर्श सुख की इच्छा को छोड़ना है क्या? अरे छोड़ना नहीं है, ये छुटी छुटाई है। आत्मा में कभी स्पर्श सुख की इच्छा होती ही नहीं है। कहां होती है फिर ये इच्छा? ये अंतःकरण मन के अंदर, और मैं मन हूं ही नहीं। स्पर्श सुख अब छोड़ोगे तब जो आपने कभी उसे पकड़ा हो। और एक और बात हैरानगी की, आप कहोगे हम तो कामी हैं, चोरी हैं। आप कभी भी कामी नहीं थे, आप अभी भी कामी नहीं हो, और आप भविष्य में भी कामी नहीं होगे। क्यों? चेतन अमल सहज सुख राशि, आत्मा अमल ही अमल है और अमल रहेगी। आत्मा कामी नहीं हो सकती, चाहते भी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वो अमल है। अमल कभी भी मल युक्त नहीं हो सकती। काम जो तो मल है ना, स्पर्श सुख मतलब कामी होना, कामी मतलब मल, आत्मा के लिए मल है काम। आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानिनो नित्य वैरेण, ये काम जो है, स्पर्श सुख की इच्छा जो है, ये सबसे बड़ा दुश्मन है सभी व्यक्तियों का, खासकर भक्तों का, क्योंकि ये स्पर्श सुख की इच्छा हमें उस स्पर्श सुख की उपलब्धि से वंचित रख रही है। ये नहीं कि आप स्पर्श सुख करोगे उसके बाद आपको भगवत प्राप्ति नहीं होगी, इसकी इच्छा भी यदि है तो वो भगवत प्राप्ति की इच्छा भी नहीं हो सकती तब तक, क्योंकि मन तो एक है ना, मन या तो भगवान में लगेगा या काम में लगेगा। और आपको एक बात बताएं, जब कामाग्नि में व्यक्ति डूब जाता है, उसको लगता है मेरे अंदर काम बहुत भर गया है, वो तब भी निर्विकारी होता है। जब आप काम युक्त होते हैं तब भी आप निर्विकारी होते हैं, क्योंकि तब भी आप क्या होते हैं? चेतन अमल सहज सुख राशि। आप निर्विकारी थे, निर्विकारी हैं और निर्विकारी रहेंगे। काम क्रोध आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि काम क्रोध आपसे संबंध ही नहीं है, ये अंतःकरण की वृत्तियां हैं केवल। और अंतःकरण की वृत्तियों से चेतन अमर शरीर सुख राशि का संबंध हो ही नहीं सकता। जब आप कामाग्नि में भी हैं तो भी आप सहज सुख राशि हैं, तो भी आप निर्विकारी हैं और तो भी आप अमल हैं। काम क्रोध की इच्छा को पूर्ति करके आनंद नहीं प्राप्त होता। श्री कृष्ण क्या बता रहे हैं, काम क्रोध वियुक्ता नाम, किसको आनंद प्राप्त होता है जो काम और क्रोध से युक्त नहीं है, वियुक्ता नाम, काम क्रोध से परे है जो व्यक्ति। अगले फिर बात बोलेंगे हमें परे होना है काम क्रोध से, आपको परे नहीं होना, अपने आप को याद दिलाओ मैं परे हूं, इस समय भी मैं काम क्रोध से रहित हूं। सिर्फ याद दिलाना है अपने आप को, अपनी एक गलत फहमी के कारण, एक गलत मान्यता के कारण हम अपने अनंत जन्म जो है वो व्यर्थ कर रहे हैं स्पर्श सुख के पीछे भाग के। स्पर्श सुख इस संसार में नहीं हो सकता। हां, स्पर्श सुख की इच्छा से हम गधा बन सकते हैं, कुत्ता बन सकते हैं, हम बिल्ली बन सकते हैं स्पर्श सुख की इच्छा की वजह से, पर स्पर्श सुख नहीं प्राप्त कर सकते। अब अपने आप से पूछिए, जो एक भैंस होती है, भैंस अपने आप को भैंस मान के एक भैंसी का स्पर्श सुख प्राप्त करना चाहती है, और एक गधा अपने आप को गधा मान के एक गधी का स्पर्श सुख प्राप्त करना चाहता है, और एक मनुष्य अपने आप को पुरुष मान के स्त्री का स्पर्श सुख प्राप्त करना चाहता है, तो इनमें भेद क्या है? क्या इनमें कोई भेद है? जैसा गधा वैसा भैंस और वैसा ही पुरुष, इसी को कहा जाता है सामान्यम एताम पशु भी नराणाम। जिसमें स्पर्श सुख की इच्छा है वो एक भैंस से या गधे से अलग नहीं है, उनके बिल्कुल समान है, पशु भी समान। जिस व्यक्ति में स्पर्श सुख की इच्छा है वह पशु के समान है। जो गौर सुंदर के चरणों की प्राप्ति है या राधा कृष्ण के चरणों की प्राप्ति है, ये भक्ति की सर्वोच्च कक्षा है, सर्वोच्च कक्षा। इसके लिए भक्ति का क ख ग तो क्लियर होना चाहिए, एबीसीडी ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ ये क्लियर होना चाहिए। एबीसीडी क्या है कि मैं स्पर्श सुख नहीं चाहता, स्पर्श सुख संभव नहीं है, मैं कभी उसकी कामना अब से नहीं करूंगा। यदि मुझे ये बात समझ आ गई है, आप कहते हम निर्विकारी होना चाहते, क्या करें? आप सिर्फ ये काम करो, स्पष्टतः अपने आप को अनुभव करो कि मैं मन से बिल्कुल अलग हूं, मैं शरीर से बिल्कुल अलग हूं, मैं काम क्रोध से बिल्कुल अलग हूं, मेरे अंदर कभी भी काम नहीं था, आपको मेरे अंदर काम है, हम कहते था ही नहीं कभी भी आपके अंदर, ना आगे होगा ना अब है, आप मान रहे हो कि मेरे अंदर है, वो तो मन में है, मन तो जड़ है, मन के साथ तादात्म्य करने से आप ये मान रहे हो कि आप में काम आ गया। आप में काम कैसे आएगा अगर आप अमल चेतन अमल हो, सहज सुख राशि हो आप? व्यक्ति सोचे कि हां कोई बात नहीं, मैं तो विवाहित हूं, या मैं ये जो अविवाहित है उनके लिए ये प्रवचन होगा, नहीं, ये विवाहित के लिए भी उतना ही है। क्योंकि व्यक्ति सोचे हम तो विवाहित स्त्री पुरुष हैं तो हमारी जब इच्छा हो हम अपनी काम क्रीड़ा में प्रवृत्त हो सकते हैं। देखिए, जो विवाह के अतिरिक्त ये क्रियाकलाप करता है वो निश्चित रूप से नर्क का गामी होता है, निश्चित रूप से, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु विवाहित होकर भी यदि इसी क्रिया में प्रवृत्त है तो उसको भगवत चरणों की प्राप्ति कभी नहीं होगी। क्यों? धर्म अविरुद्धो कामो अस्मि, जो धर्म के विरुद्ध जो काम है वो भगवान नहीं है, जो धर्म के युक्त काम है वो संतान उत्पत्ति के लिए काम क्रीड़ा जो होती है उसका मना नहीं है, संतान उत्पत्ति के लिए, ये श्री कृष्ण कह रहे हैं। उसके अतिरिक्त चाहे विवाहित हो चाहे अविवाहित हो, ये बहुत नीचे दर्जे की बात है, हम तो विवाहित हैं, हां उससे अच्छी है, यहां इधर उधर मुंह मारना उससे अच्छा है, परंतु यदि भगवत प्राप्ति करनी है तो ये तो बहुत नीचे का स्तर है, बहुत नीचे का स्तर। दस दस बीस बीस साल हो गए, दो दो तीन तीन बच्चे, उसके बाद जब इच्छा नहीं, ये तो प्राप्ति कुछ नहीं होगी। हम ये सत्र केवल उनके लिए ले रहे हैं जो भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, वो भी इसी जन्म में। काम क्रोध वियुक्ता नाम,
और यदि कोई वास्तव में इस काम इच्छा से रहित होना चाहता है तो भोजन पर ध्यान देना चाहिए, यह नहीं कि जब मर्जी जितना मर्जी खा लिया। रात को अल्प मात्रा में लेना चाहिए, नहीं तो वो भोजन की मात्रा ही जो है वही रात्रि में काम अग्नि को और प्रज्वलित कर देगी, जो कि है नहीं। अर्जुन पूछते हैं गीता में, सिप प्रज्ञस का भाषा समाधिस्तत्व केशव, हे केशव जो सिप प्रज्ञ पुरुष है उनकी क्या भाषा होती है? उनकी यह भाषा होती है कि गौर बिना आर चाही ना, गौर बिना आर जानी ना, मैं गौर के बिना किसी को जानता नहीं हूं, गौर के बिना किसी को चाहता नहीं हूं। यह है सिप प्रज्ञ की भाषा। और हम चाहते हैं इसका स्पर्श, उसका स्पर्श, स्पर्श सुख से आप रहित हैं, ये स्पर्श सुख की इच्छा से भी आप रहित हैं। यह आप समझिए आत्मा की वास्तविक इच्छा क्या होती है, मुझे आनंद चाहिए, भगवान चाहिए, तो उसमें कभी भी स्पर्श सुख की इच्छा नहीं है, उसे भगवान की इच्छा है, भगवान की प्राप्ति की। चाहे वो दूसरे शांत रस में भी देखे तब भी वो परम संतुष्ट रहेगा, स्पर्श की आवश्यकता नहीं है। क्या रस, रस के अलग अलग विभाग हैं, वह अलग हैं। और आप एक बात सोचिए कि यदि हम औरों के शरीर से अनासक्त नहीं हो पा रहे तो इस शरीर से कैसे अनासक्त होंगे? इस शरीर से तो अपने आप को अनासक्त करना पड़ेगा यदि भगवत प्राप्ति करनी है। हम औरों के शरीरों के पीछे पड़े हुए हैं, चिपके पड़े हैं, दिमाग में भूसा भरा हुआ है। हां, औरों के शरीर, अरे तुम्हारा इस शरीर से भी कोई संबंध नहीं है, इस शरीर का स्पर्श भी तुम्हें नहीं मिल रहा, किसी के शरीर का क्या स्पर्श मिल सकता है? दूसरी भाषा, आपको आपकी भाषा में यदि हम समझाएं, स्पर्श करने के लिए किसी को स्त्री होना पड़ेगा और किसी को पुरुष होना पड़ेगा, ठीक बात है? श्री कृष्ण गीता में क्या करें, मासान सी जीरवानी, ये सब तो वस्त्र हैं, किसी ने स्त्री का वस्त्र डाला है, किसी ने पुरुष का। स्त्री इस संसार में एक भी नहीं है, संसार में स्त्री, और पूरे ब्रह्मांड में भी एक भी पुरुष नहीं है। क्यों? ये तो वस्त्र है। आपको पहले व्यक्ति तो होना पड़ेगा ना स्पर्श सुख के लिए, आप व्यक्ति नहीं हो। गौरांग महाप्रभु क्या बता रहे हैं, वे कहते हैं सब आत्मा चित्त कर्ण है। महाप्रभु ने रस तत्व का तो बताया ही है, राधा कृष्ण का, उनकी प्राप्ति का उपाय, परंतु उन्होंने आत्म तत्व के बारे में भी बताया है। आत्मा जो मैं हूं वो क्या हूं? चित्त कर्ण, मैं एक कर्ण हूं, कर्ण, एक छोटा सा कर्ण। जैसे आप देखते हो सूरज की जब रोशनी आती है खिड़की से तो छोटे छोटे कर्ण दिखते हैं, बस मैं वो एक छोटा सा कर्ण हूं, उसे छोटा सा कर्ण। मैं कभी व्यक्ति नहीं बना, मैं कभी भी स्त्री या पुरुष नहीं था, ना अब हूं। हम में से कोई भी स्त्री या पुरुष नहीं है, ये उपनिषद बताते हैं। हमारा कभी भी कोई लिंग नहीं था, क्योंकि हम इस संसार में हैं तो अलग अलग शरीरों में जा रहे हैं, हम कभी भी स्त्री या पुरुष नहीं बने कभी भी। और स्पर्श सुख के लिए किसी को स्त्री और किसी को पुरुष तो होना ही पड़ेगा। आप समझ पा रहे हैं इस बात को? इस संसार में एक भी स्त्री नहीं है और एक भी पुरुष नहीं है, सब चित्त कर्ण है। और एक गलत मान्यता की वजह से, एक ये भारी गलत मान्यता कि स्पर्श सुख है और वो बहुत ऊंचा है, इस वजह से हमारे अनंत जन्म व्यर्थ जा चुके हैं। जब वामन भगवान अवतरित हुए तब भी हम यही थे, जब भगवान वरा अवतरित हुए तब भी हम यही थे, तब भी मानते थे कि स्पर्श सुख है। भगवान राम आए तब भी हम मानते थे स्पर्श सुख है, यहीं के यहीं है। श्री कृष्ण आए चले गए, गौर आए चले गए, हम देखिए कहां के कहां हैं। किस लिए? ये सबसे मूल जड़ है इस संसार में रहने की, हम मानते हैं स्पर्श सुख है और मुझे वो चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि आप ये सोचो कि अच्छा भक्ति में उन्नत होना है तो हमें स्पर्श सुख को नहीं करना चाहिए, आनंद है, हम ये नहीं कह रहे। हम कह रहे स्पर्श सुख संभव ही नहीं है, ये कोई तपस्या नहीं है कि हमें स्पर्श सुख का अनुभव नहीं करना, ये बुद्धिमत्ता का लक्षण है। इसमें क्या तपस्या कि आप कोशिश कर रहे हो एक ईंट, एक पहाड़ का पत्थर है उसमें से आप अनार का रस निकाल रहे हो, क्या किसी पत्थर से पहाड़ से अनार का रस निकल सकता है? कोई आपको बोल दे कि ये संभव नहीं है, पहाड़ से कभी कोई अनार का रस निकलता है? आप क्या बोलोगे? धन्यवाद, आपने बचा लिया, मैं तो व्यर्थ का ही कार्य कर रहा था।
पहाड़ से अनार का रस निकाल रहा था। उसी प्रकार से ये कोई तपस्या नहीं है कि ये सुख आप में आप मत प्रवृत्त हो, ये बुद्धिमता है। जो चीज प्राप्ति नहीं हो सकती उसके लिए कार्यान्वित क्यों हो हम? अरे भाई कुछ प्राप्त हो सके तो कोई काम करो, समझ में आती है। ये पूर्णतः व्यर्थ का कार्य है। एक गलत सहमी का शिकार है कि स्पर्श सुख हो सकता है, स्पर्श केवल स्त्री पुरुष को हो सकता है, और हम कभी भी इसलिए अपन बने ही नहीं। कभी हम एक कर्म मात्र इसके अंदर बैठे हुए हैं, हमें लगता है मैं ये कर रहा हूं। उस कामाग्नि में जब प्रवृत्त होते हैं तब भी हम कुछ नहीं कर रहे होते। क्यों? श्री कृष्ण बता रहे हैं ना करोति ना लिप्यते, आप कभी भी कोई कार्य नहीं करते। और कैसे समझे इस बात को? जैसे मान लो आप रेलगाड़ी में बैठते हो, तो रेलगाड़ी में बैठते हो तो आप चल रहे होते हो कि रेलगाड़ी चल रही होती है? कौन चल रहा होता है? रेलगाड़ी चल रही है। और कोई सोचे कि मैं चल रहा हूं, वो गलत फहमी है कि नहीं है? उसी प्रकार से इस शरीर का कोई भी कार्य हो रहा होता है, व्यक्ति सोचे मैं कर रहा हूं ये कार्य, अरे वो रेलगाड़ी द्वारा हो रहा है, ये शरीर द्वारा हो रहा है। जैसे मैं रेलगाड़ी में बैठा हुआ हूं वैसे ही मैं शरीर में बैठा हुआ हूं। जैसे मेरा रेलगाड़ी के किसी कार्य से कोई संबंध नहीं है वैसे ही मेरे शरीर के किसी कार्य से कोई संबंध नहीं है। सुख तो बड़े दूर की बात है, संबंध ही नहीं है। हम इस नवद्वीप धाम में बैठ के भी इस विषय में क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यह विषय इतना जरूरी है, इतना जरूरी है। हम छटपटा रहे हैं कैसे किसी को यह बात समझा दें, क्योंकि जब तक यह बात समझ नहीं आई, जितना मर्जी गौर मंत्र, जितना मर्जी परिक्रमा कर लो, कुछ भी कर लो, उस रस की प्राप्ति नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। भगवान सत्य स्वरूप है, सत्य सत्य स्वरूप। भगवान को प्राप्त करने के लिए हमें सत्य का जीवन तो जीना होगा। यह सत्य है कि हमें स्पर्श सुख प्राप्त नहीं हो सकता और हम इसमें प्रवृत्त हैं। तुम सत्य का जीवन भी जी रहे हो क्या? भगवत प्राप्ति तो छोड़ दो, क्या यह सत्य का जीवन है कि स्पर्श सुख की कामना करना? यह बात सर्वथा असत्य है, बिल्कुल असत्य है यह बात। और यदि महाप्रभु ने वैष्णवों के लिए आज्ञा दी है, क्या आज्ञा है? असत संग त्याग ए वैष्णव आचार। अतो भी इसमें असत संग कहां से आ गया? असत संग जो होता है दो प्रकार का होता है, एक व्यक्ति का और एक वृत्ति का। वृत्ति माने एक मन की इच्छा का। तो अगर कोई मानता है कि स्पर्श सुख होता है और मुझे वो चाहिए, तो वो निरंतर क्या कर रहा है? असत संग। ये बात तो असत है ना, स्पर्श सुख होता नहीं है और हम चाहते हैं हमें मिले, ये बात बिल्कुल असत है। वो जो इस बात का संग कर रहा है वो निरंतर असत्संग कर रहा है। जब वो निरंतर असत्संग करोगे तो सत्य स्वरूप परमात्मा गौर सुंदर की प्राप्ति कैसे होगी? आप अपने आप से पूछो, अपने आप से पूछो, मैं यदि असत्संग में रत हूं 24 घंटा, स्पर्श सुख की इच्छा मेरे मन में भी है, चाहे कर नहीं पाता भारी कारणों से, यदि मेरे मन में भी स्पर्श सुख की इच्छा है तो मैं निरंतर असत्संग कर रहा हूं। और असत्संग करते करते सत्य की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति होना कदापि संभव नहीं है। असत्संग करना बंद करना होगा। मैं स्पर्श कर सकता हूं, ये एक अहंकारी व्यक्ति की भाषा है, ये सिद्ध प्रज्ञा की भाषा नहीं है। सिद्ध प्रज्ञा से कहा भाषा अर्जुन क्यों बोल रहे हैं कि सिद्ध प्रज्ञा मतलब जिसकी बुद्धि स्थिर है, माने जो भगवत प्राप्ति करना चाहता है उसको बोलते हैं स्थित प्रज्ञ भक्तों में। तो जो स्थित प्रज्ञ है वो उसकी भाषा एक अलग ही होती है। वह वो मानता है कि स्पर्श सुख की होता नहीं और मैं चेष्टा भी नहीं करूंगा। वो कभी नहीं बोलता मैंने स्पर्श सुख की इच्छा है या मैंने चेष्टा की। ये तो अज्ञानी की भाषा है कि मुझे स्पर्श सुख चाहिए। ये तो मूर्ख की भाषा है, ये तो मूर्ख की भाषा है। अज्ञानी व्यक्ति बोलता है स्पर्श सुख के बारे में, ज्ञान में स्थित व्यक्ति थोड़ा बोलेगा। स्थित व्यक्ति से कहा भाषा, वो विलक्षण भाषा होती है, उसका चलने का ढंग अलग है, उसकी भाषा अलग है, उसकी आंखें अलग बात बोलेंगे, स्पर्श सुख नहीं बोल सकती उसकी आंखें। और महाप्रभु शिक्षाश्रम जो हमें देके गए हैं उसका पहला ही पंक्ति का पहला ही शब्द क्या है? चेतो
दर्पण मार्जन, अपने इस चित्र रूपी दर्पण का मार्जन, कान क्रोध का सिंहासन बैठा हुआ है तो मार्जन कैसे होगा? ये अंतःकरण का मलिन, अंतःकरण इतना मलिन है इसी वजह से किसी को लगता है कि मैं स्पर्श सुख की मेरी इच्छा है। अंतःकरण मलिन है तभी ये इच्छा है स्पर्श सुख की। यदि अंतःकरण मलिन नहीं होगा स्पर्श सुख की इच्छा नहीं हो सकती। ध्यान दो इस बात को। अब बोलते ना मैं भक्ति करके पवित्र हो रहा हूं या नहीं हो रहा, अपने आप से पूछो क्या मेरी स्पर्श सुख की इच्छा है? यदि इच्छा है तो मेरा अंतःकरण मलिन है। यह 18वें अध्याय का 16वां श्लोक है भगवद गीता में, उसमें भी बताया जा रहा है, आप खुद ये शब्दों को समझें। तत्र एवं सति कर्तारम आत्मानम केवलम तू यह पश्यत्य अकृत बुद्धि बुद्धित्वान न स पश्यति दुर्मतिः। श्री कृष्ण कह रहे हैं जो कर्ता, जो अपने आप को स्पर्श सुख का कर्ता या भोक्ता मानता है, वे उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है। अकृत बुद्धित्वात, उसकी कृतज्ञता शुद्धि उसमें है नहीं, और दुर्मति बोल रहे हैं भगवान, दुर्मति। जो करता अपने आप को मानता दुर्मति है, शरीर में रहकर मैं कुछ करता हूं। आत्मा सदैव से निर्लिप्त है, सदैव से कर्ता भाव से रहित है। आत्मा में कभी भी कर्तृत्व भाव, कर्तृत्व नहीं हो सकता। आत्मा इस संसार में कभी एक भी क्रिया नहीं कर सकती, एक भी क्रिया, एक चावल का दाना भी नहीं खा सकती। आगोल हम तो रोज खाते हैं, यही तो गलत फहमी है। यह भी स्पर्श सुख के अंतर्गत आता है। स्पर्श सुख केवल जनेन्द्रियों का नहीं है, स्पर्श सुख जीवा का भी है। हमें लगता है ज्यादा खा लेते हैं, यह भी स्पर्श सुख के अंतर्गत आता है, परंतु यह आज का विषय नहीं है। आज का विषय केवल इस काम के ऊपर है। पांच इंद्रिय का सुख स्पर्श सुख के अंदर आता है, और श्री कृष्ण क्या बता रहे हैं, ये ही संस्पर्श भोगा दुख योनिया एवते। ये जो संस्पर्श जो है ये वास्तव में दुख का कारण है। ये स्पर्श की इच्छा ये सिर्फ एक चीज देती है, दुख। हमको हाँ हमें सुख मिलता है, यही गलत फहमी है कि हमें कुछ मिलता है। इस संसार में जीवात्मा को एक ही चीज मिल सकती है, वो है परमात्मा, और कुछ नहीं मिल सकता। वो तब मिलेंगे जब अपने आप को काम क्रोध रहित मानोगे, जो कि आप हो। आपने आपको मेहनत नहीं करनी है, आप स्वाभाविक अमल हो, स्वाभाविक मन रहित हो। अपने आप को मन से तादात्म्य करने की जो गलत आदत है उसको छोड़ना है, मन से तादात्म्य। हम सब लोग जप करते हैं, धाम की यात्रा करते हैं, किस लिए करते हैं, किस लिए करते हैं बताइए? यही चाहते हैं हमारी श्यामा श्याम की अष्टलीला में प्रवेश हो जाए, यही चाहते हैं, यही चाहते हैं। तो फिर हमारे को ये जो अपनी मूर्खता की क्रियाएं हैं इसको छोड़ना होगा। आचार्यों की भाषा में इसको कहा जाता है, विषय छड़िया कबे शुद्ध अभिमान कभी आमी है री बोशी वृंदावन। वृंदावन को तभी मैं देख पाऊंगा जब विषय छड़िया कभी शुद्ध अभिमान, मन शुद्ध जब होगा, मानूंगा कि मैं स्पर्श सुख नहीं चाहता, फोर्स से नहीं, हृदय से मैं स्पर्श सुख नहीं चाहता, त्रिकाल में मैं कभी नहीं चाहता। 100 हर्ष जब हम बोलेंगे हां मैं अपने आप को मैं कभी स्पर्श सुख नहीं चाहता, तब आपके अंदर वो अग्नि प्रज्वलित होगी कि हां मैं गौर सुंदर को चाहता हूं, मैं केवल इनको चाहता हूं। तब वो अग्नि प्रज्वलित होगी। जब आप हृदय से मानोगे कि मैं स्पर्श सुख नहीं चाहता, मिलने पर भी नहीं चाहता, अंग्रेजी में शब्द है मास हिप्नोसिस, जिसका मतलब होता है मास मतलब पूरे बहुत बड़ी जनता को किसी ने एक जादू के उसमें डाला हुआ हो गलत फहमी में कि सभी एक मूर्खता से कार्य करते हैं। आप देखते हैं ना जादूगर कई बार कर देते हैं, सब एक साथ ऊपर मुंह देखते हैं एक साथ नीचे, ये ऐसे पागलपन का जादू चढ़ा हुआ है संसारियों के ऊपर कि सब मानते हैं मुझे स्पर्श सुख चाहिए। ये बहुत ही व्यापक स्तर पे एक गलत टीवी देखो मोबाइल यही फैला हुआ है स्पर्श सुख स्पर्श सुख स्पर्श सुख। जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है इसके आकर्षण से। अब कोई बोले कि मेरा तो स्त्री के प्रति आकर्षण है या कोई स्त्री बोले मेरा पुरुष के प्रति आकर्षण है, अरे नहीं है आपका, आंखों के हमारा है, हम कह रहे हैं है ही नहीं। क्यों नहीं है? आकर्षण तो तब होगा जब आपकी किसी स्त्री या पुरुष के प्रति कोई फीलिंग होगी। आपकी किसी स्त्री या पुरुष के प्रति कोई फीलिंग नहीं है, आप केवल आनंद चाहते हो, भगवान है। दो टके सार बात यह है, आपको और समय आनंद चाहिए। आपको ना किसी स्त्री से मतलब है ना आपको किसी पुरुष से मतलब है, आनंद मतलब भगवान। मैं हर समय आनंद चाहता हूं, गलत फहमी लग रही है, मैं स्त्री को चाहता हूं मैं पुरुष, आप नहीं चाहते स्त्री को, आप पुरुष को नहीं चाहते कोई भी, आप केवल आनंद श्री भगवान को चाहते हो, उन्हीं को चाहते थे उन्हीं को चाहते हो केवल उन्हीं को चाहोगे। ये भी गलत फहमी है कि हमें लगता है मैं स्त्री पुरुष को चाहता हूं, नहीं चाहते आप। आप कैसे चाह सकते हो, आत्मा कैसे किसी स्त्री की कामना कर सकती है? अरे चाह स्त्री की कामना पुरुष की कामना करने के लिए आपको अंदर मल आना पड़ेगा, आप अमल हो, अमल के अंदर कैसे स्त्री पुरुष की कामना हो सकती है? स्पर्श सुख प्राप्ति छोड़ो, आपके अंदर स्पर्श सुख की कामना भी नहीं है, आप ये जानते नहीं हो। हम सिर्फ आपको बता रहे हैं जो आप हो, आप अमल हो, हम सिर्फ ये याद दिला रहे हैं आपको। आपको काम थोड़ा से ऊपर नहीं उठना, आप काम थोड़ा से ऊपर हो, आप नहीं समझ पा रहे यही समझा रहे हैं हम आपको। आपको करना कुछ नहीं है, करा धरा सब भगवान ने पहले से किया हुआ है, आपको अमल बनाया हुआ है। आप कभी भी मन युक्त नहीं हो सकते, काम युक्त नहीं हो सकते, आप बिल्कुल रहित हो इन कामक्रोधी विकारों से, बिल्कुल रहित हो। आप यू जस्ट डोंट नीड स्पर्श सुख, आपको बिल्कुल स्पर्श सुख नहीं चाहिए, यह बात बिठा लो अपने अंदर। किसी प्रकार का स्पर्श सुख नहीं चाहिए, किसी प्रकार की स्त्री पुरुष कोई भी नहीं चाहिए, कभी भी नहीं चाहिए, और कभी भी चाहिए भी नहीं थी कभी। आप बोलोगे कि कहां है काम क्रोध? अब आप देखो आजकल का जो मॉडर्न जमाना है, स्त्री अपने आप को पुरुष बना लेती है ऑपरेशन करा के, पुरुष जो है अपने आप को स्त्री बना लेते हैं ऑपरेशन करा के। तो देखा जाए जो शरीर स्त्री का था जो पुरुष बना, तो क्या वो पुरुष को चाहती थी कभी? अब वो पुरुष बन गई तो स्त्री को चाहती है, इससे क्या समझ आ रहा है? ये जो है ना चाहना, ये शरीर के अंदर नहीं है, शरीर तो वही है ना, कभी उसी को स्त्री बना दिया उसी को पुरुष, अंदर कभी स्त्री को चाह रहे, वो ये झमेला ना, ये भूसा है ना जो इसके अंदर ये इसमें है, ये कभी अपने आप को स्त्री मान रहा है कभी पुरुष मान रहा है, दोनों में से कोई नहीं। आप समझ पा रहे हो बात को? आत्मा स्त्री पुरुष से बिल्कुल रहित है, स्त्री पुरुष के भावों से बिल्कुल रहित है, बिल्कुल। हमारे अंदर स्त्री के जैसी यदि कोई इच्छा हो रही है तो समझ लो मलयुक्त अपने आप को हम स्वयं कर रहे हैं जबकि हम अमल हैं। अंग्रेजी में बोले तो टच सेंसेशन, जो स्पर्श सुख को टच सेंसेशन बोलते हैं, टच सेंसेशन इज नॉट पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, टच सेंसेशन इज नॉट पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, ये समझना होगा। हम वो चाहते हैं इस संसार में स्पर्श सुख से टू एक्सपीरियंस द अन एक्सपीरियंसेबल, जो एक्सपीरियंस किया नहीं जा सकता उसका एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। समझ पा रहे हो बात को? जो चीज संभव नहीं है उसकी चेष्टा में मिन्नत लगी हुई, इसका वही मतलब है एक पहाड़ से अनार का रस निकालना, संभव है क्या कभी? मेरे प्रीतम मेरे परमात्मा के सिवा मुझे कोई स्पर्श नहीं कर सकता, कोई स्पर्श नहीं कर सकता। और वास्तव में स्पर्श सुख क्या होता है आप देखो, आप समझो स्पर्श सुख क्या होता है। आपने श्रीनिवास आचार्य की कथा सुनी होगी,
بابا آپ بتائے ہوں گے شرینواسا چارے کا وہ نتیہ لیلا میں وہ ہولی کا اور مالا کا.
بابا آپ کو ضرور بتائے ہوں گے کہ شرینواسا چارے دھیان کر رہے ہیں مہاپربھو کی اشکالی لیلا کا, گورنگ مہاپربھو کی, اس میں وہ سیوک بھاو سے مہاپربھو کو چندن عطر اور مالا پہناتے ہیں, مالے گنفن کرتے ہیں مالا پہناتے ہیں. تو تھوڑی دیر بعد کیا دیکھتے ہیں جو مالا انہوں نے اپنے مانس سیوا میں پہنچائی تھی چنتن کے دوارا جو پہنائی تھی وہی مالا ان کے گلے میں شریر آئی ان کا شریر پلک ہو رہا ہے, اس کو کہتے ہیں سپرش سکھ. تو سپرش سکھ ہے, ایسا نہیں کہ سپرش سکھ نہیں ہے, پر یہاں نہیں ہے وہاں ہے, یہاں بالکل نہیں ہے. تو سپرش سکھ چاہتے ہو بالکل ٹھیک ہے, پر وہ سپرش سکھ ایشور یہ سپرش سکھ یہ کیا سنساری آدمی عورتوں کا سپرش سکھ کرو, اتنا گرا ہوا سر کیوں سوچ رہے ہو ہمارا ہے. سارانش, اپنے آپ میں کبھی کمی مت مانو, اپنے آپ میں کبھی خالی پن مت مانو, اپنے آپ کے اندر کوئی ابھاؤ مت مانو کہ میرے میں کوئی کمی ہے مجھے یہ ویکتی میری کمی پوری کر دے گا. ہماری کمی پرماتما کے اتریکت کوئی پوری نہیں کر سکتا. کسی پرکار کے سپرش سکھ کی کسی سے کوئی اچھا مت کرو, یعنی وہ والا سپرش چاہتے ہو شرینواسا چارے والا سپرش, روپ گوسوامی کا وہ جو سپرش چاہتے ہو یہی بڑے بڑے سپرش ملے گا. کیسے ملے گا؟ ہردے سے چھوڑ دو, ہردے سے بولو ہے گور سندر آپ کے سپرش کے اتریک میں کسی کا سپرش نہیں چاہتا. اس بھاونا سے جب بلائیں گے تو گور سندر شیگر پرکٹ ہو جائیں گے. گور پریمانند اب اندر سے اب یہ مانیے مجھے کیول گور سندر کا سپرش سکھ چاہیے اور پھر بھگوان گور نام لیں, پھر دیکھیے کتنا آنند آئے گا.